Om Shanti. Dr. Avdhesh Sharma ji हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप पैनल सेशन में डॉक्टर साहब को सुन चुके हैं। आप दिल्ली के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं और बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे निवेदन पर इस सम्मेलन के लिए समय निकाल करके उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है। और मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वो डॉक्टर साहब का गुलदस्ते और बैजेस से स्वागत करें। का विषय है मेंटल हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अगर हम भावनात्मक रूप से सशक्त होते हैं तो फिर सही मायने में हमारा आंतरिक सशक्तिकरण कैसे होता है, उस विषय पर स्पष्ट करेंगे डॉक्टर साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सविता। थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए, आपको देख सकूं। काफी थके हुए नहीं? 9:30 बजने वाले, घरों में हम थक जाते हैं, यहां नहीं थकते। कारण क्या है? अभी जो गाना चल रहा, नहीं घर में भी रिलैक्स्ड नहीं है? घरों में रिलैक्स नहीं। ओके, अभी गाना चल रहा था, सदा खुश रहो, गुनगुनाते रहो, दैट इज द की। कितना हंसते हैं आप रोज? बच्चे एडल्ट से करीबन 70 से 80 टाइम्स ज्यादा हंसते हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, प्राप्तियां होती जाती हैं, हंसना भूलते जाते हैं। समाज सिखा रहा है। अगले करीबन आधे घंटे में जो बातें करेंगे वो आपके डॉक्टर्स आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये जो कुछ डिस्कशंस हो रही हैं ये तभी पॉसिबल है जबकि हम थर्ड डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग लेके आए। पहली डायमेंशन क्या है? जो दिख रहा है, फिजिकल। उसके साथ में एक डायमेंशन है जो कुछ लोग समझ पाते हैं, जिसे कहते हैं मेंटल। क्योंकि शरीर है, पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम सोच नहीं पाए तो सुबह उठेंगे नहीं। अगर रिलेशनशिप्स हैं और उसमें कोई भी इमोशंस महसूस ना कर पाए तो बड़ी नीरस होंगी। तो हमारा सब कुछ जो चलता है वो एक्चुअली माइंड के थ्रू चलता है, लेकिन उसके पीछे एक और डायमेंशन है जो है स्पिरिचुअल। मेरे ख्याल से मॉर्निंग में जो क्लासेस चल रही हैं इस कड़ी को, उसके बारे में बात हुई होगी। एक है शरीर जो कि पांच तत्वों का बना हुआ है, उसको चलाने के लिए और उसको संभालने के लिए हर समय उसमें इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन बात वहां पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस जो है वो हालांकि शरीर को चला रहा है, उसका एक हिस्सा है, लेकिन वो भी इस शरीर के रहने तक है। जिस दिन ये शरीर गया तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ माइंड है वो भी खत्म हो गया। लेकिन एक थर्ड डायमेंशन है जो कि एनर्जी स्वरूप है, जिसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्शंस हैं, अजर अमर है, हमेशा ना कम होती है ना ज्यादा होती है, उसमें सारे राज समाये हुए हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो थ्री डायमेंशंस हैं, ये तीनों डायमेंशंस का इसमें होना जरूरी है, तभी वो चल पाती है। प्राइमरी क्या है जी? फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल में प्राइमरी क्या है? फिजिकल है जी। तो अगर बॉडी हो और सोल ना हो तो चलेगा? अच्छा, अगर सोल हो, बॉडी ना हो तो भी चलेगा? तीनों का होना जरूरी है। तीनों एक दूसरे के साथ मिश्रित हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं एक जो भ्रांति हम सबके मन में पैदा हो जाती है, हम किसी स्पिरिचुअल जगह पे आते हैं ऐसी जगह पे, तो कहते हैं हाँ सोल कॉन्शियस हो गए तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर वो सोल को धारण करने वाला शरीर सशक्त नहीं है, या इस प्रोसेस को आगे ले जाने वाला मन सशक्त नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। सोल जो है वो शरीर को क्रिएट करती है या उसके अंदर रहती है। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अंदर रहती है तो मतलब वो घुस जाती है, कमरा बंद कर लेती है और उसके बाद शरीर चलता है जी। क्या सच्चाई है? मन तो आत्मा जो है वो मन को दिशा देती है और शरीर को क्या करती है? ओके, तो मतलब जो बॉडी है वो भी कांस्टेंट है? जो आप बचपन में थे वो अभी है, जो कल थे वो आज है, जो आज है वो कल होंगे? शरीर तो बदल रहा है ना, तो फिर शरीर कैसे बदल रहा? आत्मा मन के द्वारा शरीर को क्रिएट करती है। शरीर हर समय बदल रहा है। 1.5 साल में ये मॉडल खत्म हो जाता है। जो मेरी कार है 12 साल पुरानी है अब, वो तो सेम है लेकिन मैं 6 या 7 बार बदल चुका हूं। उसका मॉडल सेम चल रहा है, मेरा मॉडल बदलता जा रहा है। और उसका कारण यह है कि हर समय जो बॉडी की वेयर एंड टियर जिसको बोलते हैं वो होती रहती है। स्किन जो है वो करीबन 1 महीने में बिल्कुल नई हो जाती है। स्टमक जो है वो 5 दिन में गल जाता है, नया आ जाता है। उसी तरह से बॉडी का हर सेल, हर मॉलिक्यूल, जो हम खा रहे हैं, जो पचा रहे हैं, जो ब्रीद इन कर रहे हैं, जो ब्रीद आउट हो रहा है, उसके द्वारा नया बनता रहता। लेकिन बीमारियां चलती रहती हैं। डायबिटीज चलती रहती है, एलर्जीज चलती रहती है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर जो मेमोरीज हैं वो मेमोरीज चलती रहती हैं। और अगर हम, जो पिछले सेशन में बात हो रही थी कि आत्मा को सशक्त कर देते हैं, उसमें पावर आ जाती है, तो वो मन के द्वारा नए और ज्यादा सुंदर शरीर को क्रिएट कर सकता है। इसीलिए कई बीमारियां कहा जाता है कि अगर आप मन से सशक्त हैं या स्पिरिचुअली कॉन्शियस हैं तो हो सकता है आपको शारीरिक रूप से बीमारी हो लेकिन आपको महसूस नहीं होती। इन्वेस्टिगेशंस कहती हैं कि आप ठीक नहीं हो लेकिन आप सब काम करते जा रहे हो। लोगों को टर्मिनल कैंसर्स होते हैं, वो कहते हैं बेटे की शादी साल के बाद करनी है, एक साल तक चल जाते हैं उसके बाद ड्रॉप हो जाते हैं। सो इस कॉन्टिन्यूम में फिजिकल, मेंटल और उसके साथ एक जुड़ा है सोशल। तो आत्मा जो है वो शरीर के हर हिस्से को मन के द्वारा चलाती है। मन कहां पर है? जी ओके, तो सोल कहां है? अगर सोल सिर्फ यहां है और मन भी सिर्फ यहां है तो ये सब छोड़ दिया हमने। विचार एक फैकल्टी है उसकी। एक्चुअली पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो एनर्जी सिस्टम है। आत्मा जो है वो फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दिखती नहीं है लेकिन जैसे जैसे हम शरीर की ओर आते हैं तो वो एनर्जी डेंस होनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए आपके पास एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा लिफाफा है, आप उसको प्रेस करते जाते हैं, जितना प्रेस करते जाते हैं वो डेंस होता जाता। तो शरीर भी उस तरह से एनर्जी है लेकिन डेंस फॉर्म में है इसलिए दिखती है। आत्मा जो है वो भी एनर्जी है, शरीर के पूरे हर हिस्से में चलती है, कुछ खास जगहों पर यहां पर उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है। मान लीजिए एक लाइट सोर्स है, ये बल्ब है, वहां की लाइट यहां भी आ रही है लेकिन वहां पर लाइट थोड़ी ज्यादा है। तो इसी प्रकार से यहां पर उसकी पावर थोड़ी ज्यादा है और इसीलिए कुछ टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं हमारे शरीर के आभा मंडल को देखने के लिए, जिनको ऑरा बोलते हैं। और वो जो दिखाया जाता है लक्ष्मी नारायण की मूर्ति में भी दिखाया जाता है, कई बार गुरुओं को भी दिखाया जाता है कि उनके शरीर से कुछ फीट दूर तक होती है, वो उनकी लाइट बॉडीज हैं जो कि एक्चुअली पावर्स ऑफ द सोल की वजह से वो लाइट दिखती है। और वो जितनी सशक्त होगी वो उतनी अच्छी बॉडी को क्रिएट करेगी। अनफॉर्चुनेटली हमने सिस्टम को बिल्कुल उल्टा कर दिया। हमने सोचा कि अगर हम शरीर को ठीक कर देंगे तो आत्मा अपने आप ठीक हो जाएगी। वेयर एज द रियलिटी इज कि अगर आत्मा सशक्त होगी तो वो सशक्त मन के द्वारा अच्छी बॉडी को क्रिएट करेगी। इसलिए जब कई बार आप बहुत खुश होते हैं या मेडिटेशन से बाहर निकलते हैं, आप खुद अपने अंदर एक बदलाव महसूस करते हैं। और हमारी बहनों से कई बार लोग पूछते हैं कि कौन से कॉस्मेटिक लगाती हो, हमेशा चमकता रहता है चेहरा। कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अंदर से वो आत्मा का जो सशक्तिकरण है वही सामने दिखता है। और जब इन सब में आप पूरा सशक्तिकरण महसूस करते हैं तो वो समाज में दिखता है। पिछले सेशन में बात हो रही थी कि कहां से शुरुआत करें। जब पेड़ में फल ज्यादा लग जाते हैं तो उसको देने ही पड़ते हैं दूसरों को, नहीं तो वो टूट जाएगा। तो जब हमारी इस बॉडी माइंड सोल एक्सिस की पावर बढ़ेगी तो वो पावर अपने आप दूसरों को महसूस होगी और वहां से सोसाइटी चेंज होगी। विमेन्स एम्पावरमेंट की बात भी चली, दो तरह की एम्पावरमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल। बाहर से मुझे कोई नाम शान पोजीशन दे तो मुझे अच्छा लगे, और अगर देखा जाए तो पिछले 25-30 वर्षों में बहुत सारी विमेन अचीवर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन में टॉप मोस्ट पोजीशन पाई है, जरूरी है। लेकिन अगर आंतरिक रूप से आप अपने आप को सशक्त महसूस कर रहे हैं तो चाहे आप कोई बाहरी काम नहीं कर रहे, सिर्फ परिवार में ही बच्चों को अच्छे रूप से पाल रहे हैं, संबंधों को बनाए हुए हैं, अच्छे मूल्य दूसरों को दे पा रहे हैं, तो ही आपका सशक्तिकरण होकर दूसरों का सशक्तिकरण हो जाता। जरूरत पड़ती है इसमें बैलेंस लाने की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सशक्तिकरण एम्पावरमेंट। दूसरा, हमें एक बात समझने की जरूरत है कि 25-30 वर्षों में पिछले रोल्स बदल रहे हैं। अगर आप ट्रेडिशनल रोल्स देखें तो जो पुरुष था उसका काम था बाहर जाना, पैसा कमाना, लोगों से मिलना और घर ले आना, और स्त्री का काम था कि उस पैसे का सही रूप से परिवार के लालन पोषण में, बच्चों को सही मूल्यों के साथ लाने में मदद करे। अब वो रोल्स बदल रहे हैं, और पर्सनली एटलीस्ट मैं मानता हूं कि हम में से हर किसी को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें दोनों चीजों के अंश छुपे होते हैं। समाज ने कई सेंचुरी से पुरुष को एक रोल दे दिया, महिला को दूसरा रोल दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष जरूरत पड़ने पर बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पाल सकता, हो सकता है। उसमें उस नारित्व के बीज की जरूरत होती है, और महिलाएं ऐसा नहीं है कि बाहर जाके अच्छा काम नहीं कर सकती, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बनती हैं। लेकिन अगर वो उस रोल को पूरी तरह से भूल जाएं, वहां पे जब रोल्स के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ाहट होती है, वहीं पे समाज में डावाडोल होते हैं। तो ये एक फेज ऑफ ट्रांजिशन चल रहा है। इस ट्रांजिशन के फेज में जरूरी होगा कि महिलाएं बाहरी सशक्तिकरण तो करें लेकिन आंतरिक सशक्तिकरण को ना भूलें, और पुरुष उनकी उस चीज को आगे बढ़ने में मदद करें, उन्हें दबाए नहीं। अगर ये हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम सोसाइटी की काफी देर तक ठीक हो जाती है। इसी के साथ साथ जो कि बात चली, समाज में आज के समय में कुछ सच्चाइयां हैं, और अगले 10-15 मिनट में मैं उन सच्चाइयों को थोड़ा थोड़ा करके छूऊंगा। उन सच्चाइयों को जानना जरूरी है, नहीं तो हम आंखों पे एक तरह से पर्दा लगा के बैठ जाएंगे। अच्छी अच्छी बातें होंगी, लेकिन जिन लोगों को उन चीजों से जूझना पड़ रहा है, वो इस चीज को अगर सशक्तिकरण महसूस नहीं करेंगे तो आने वाले समय में सिर्फ बातें हो जाएंगी। वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज फीमेल फीटोसाइड। एंड ऑफ द सेशन मैं आपको चार छोटे से स्पॉट्स जो कि हमने रेडियो के लिए बनाए थे वो सुनाने वाला हूं। बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे घरों में भी भ्रूण हत्या होती है। इसमें डॉक्टर से लेके मां बाप और आसपास के लोग आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर जैसे हरियाणा, उसमें प्रॉब्लम इतनी बड़ी कि उनको बाद में महिलाओं को दूसरी स्टेट से बुलाना पड़ा शादी करने के लिए, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी होनी शुरू हो गई। और कुछ हद तक कई समाजशास्त्रियों का मानना है कि जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, अगर उनकी संख्या कम है, ज्यादा पुरुष हैं कम महिलाएं हैं, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। जब वो बच्ची बड़ी होनी शुरू होती है तो जेंडर इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं, लड़के और लड़की में फर्क, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, यानी अगर बच्ची बीमार होगी उसको सही टाइम पे सही दवा सही डॉक्टर द्वारा नहीं मिलेगी, लड़के को मिलेगी। घर में खाना होगा, पहले बेटे को मिलेगा फिर बेटी को मिलेगा। लड्डू बने होंगे, लड़के को मिलेंगे, बच जाएंगे लड़की को मिलेंगे। किस तरह की ड्रेस डालनी है, वहीं से एक जो रोल आइडेंटिटी कहते हैं शुरू हो जाती है, कि तुमने गुड़ियों से खेलना है और उसने गन से खेलना। वो गन अगर अब उम्र में चलाएगा तो बाद में जाके उसका असर कुछ और होगा ही। तो ये जो रोल्स हैं, ये रोल्स बचपन से ही सिखाने शुरू किए जाते हैं और वहीं पे घरों में बिना सोचे समझे ही कई बार माँ बाप जो हैं वो कन्या को दबा देते हैं। चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात चली, सच्चाई ये है कि जो हम खबरें पढ़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा, और जिनके बारे में पढ़ते हैं उनके अलावा घरों के अंदर बच्चियों के साथ और कुछ हद तक लड़कों के साथ भी बचपन में उनका सेक्सुअल रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्टडीज में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टडीज है, करीबन 50% बच्चियों ने किसी न किसी रूप में, घर में, स्कूल में, बस में, स्कूलों या काम करने की जगह पर इस चीज को छेला है। करीबन 50% लेडीज ने। डॉरी की बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि लॉ कहता है कि अलाउड नहीं है, सच्चाई ये है कि होता है, बड़े बड़े घरों में होता है। इस रूप में कई बार होता है कि लड़के को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लड़की को डॉरी दी जाएगी। डॉरी से रिलेटेड डेथ्स अब कम हैं थोड़ी सी, खासतौर पे जब बाद में लॉ आया जिसके बारे में बात चल रही थी कि लड़कियां कई बार उस लॉ को गलत इस्तेमाल भी करती हैं, जहां पे कि वो डोमेस्टिक वायलेंस की या डॉरी के बारे में बात करती हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि डॉरी अभी भी अलग अलग रूपों में मांगी जाती है और कुछ परिवारों में इसकी वजह से माँ बाप को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस करीबन 30% मैरिजेज में किसी ना किसी रूप में, और डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि थप्पड़ मारा गया या रोज पिटाई हुई, डोमेस्टिक वायलेंस का ये मतलब ये है कि साइकोलॉजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज। एक प्रश्न शाम को आया था, किसी ना किसी रूप में महिला का सशक्तिकरण रोकना भी अब्यूज है, वायलेंस है, सूक्ष्म रूप में हो चाहे, चाहे उसे नीचा दिखाना, चाहे जो जरूरतें हैं पूरी ना करना और फिर आगे गाली गलौज या मारपीट। एक तिहाई घरों के अंदर आज भी ये पाया जाता है, और ये सिर्फ गांव में नहीं है, ये शहरों में भी है, पढ़े लिखे घरों में भी है, प्रोफेशनल्स में भी है। ये असल में एक तरह की मानसिक सोच का बाहर आना है, उस मानसिक सोच में जहां पे कि पुरुष अपने आप को महिला से ऊंचा समझता है, और अगर नहीं माना जाता तो उसे दर्शाने की कोशिश करता है, और अगर रोका जाता है तो किसी के ना किसी रूप में वायलेंस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो खुद अपने अंदर सशक्त महसूस नहीं कर रहा होता। इन सब में एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति जो इस चीज को महिला के खिलाफ इस्तेमाल करता है वो अपने आप को सशक्त महसूस नहीं करता, और अपने आप को सशक्त महसूस करने के लिए वो सहारा लेता है महिला को नीचे दिखाने का। अगर आप ऊपर नहीं उठ सकते, दूसरे को दबाओ तो आप अपने आप को ऊंचा महसूस करेंगे। ये भी एक तरह का विकृत रूप है, ईव टीजिंग। हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आप में से हर किसी ने किसी ना किसी रूप में, चाहे बसों के अंदर, चाहे ड्रेन के अंदर, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, किसी ना किसी रूप में किसी शब्द को या किसी स्पर्श को, जहां पे कि आपकी आइडेंटिटी एज अ वुमन, जिसको कहते हैं वॉयलेट हुई है, वो हमेशा होती है। ज्यादातर लेडीज उसको साइड पे करके आगे निकलना सीख लेती हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है वो ये कि वो अपने आप को पूरी तरह से सेफ महसूस नहीं करती। उनका पुरुषों के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और इसी कारण से जितना वो आगे बढ़ सकती हैं उतना आगे नहीं बढ़ पाती। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि हर जगह कोई मेल आपके साथ हो, भाई हो, फादर हो, लड़का हो, या आप किसी के साथ बैठी हैं, आपको पक्का नहीं है कि वो आपको नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहेगा या किसी रूप से टच करेगा, तो काम करने की क्षमता या उन्मुक्त जीवन जीने की क्षमता वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और उसी का एक और रूप निकल के आता है जिसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट होम और वर्क कहते हैं। एक और सच्चाई जो कि आज के समाज की है वो ये है कि महिलाओं को उनके ही घरों में उनके पति के सिवा दूसरे लोग भी किसी ना किसी रूप से तंग करते हैं, और क्योंकि वो व्यक्ति जो तंग कर रहा है वो इतना करीबी रिश्तेदार होता है कि आमतौर पर वो इस बात को खोल के कह नहीं सकती। करीब 50% महिलाओं ने काम पर कभी ना कभी, जिसको सेक्सिस्ट रिमार्क कहते हैं, उनकी वेशभूषा के सामने या उनकी खूबसूरती के बारे में किसी ना किसी ने फिकरा कस के नेक्स्ट स्टेज पर जाने की कोशिश की होती है। समय के साथ साथ महिलाएं उस चीज से डील करना सीख जाती हैं, लेकिन वंस अगेन जितना खुल के वो काम कर सकती हैं वो काम नहीं कर पाती, और उसकी वजह से हमेशा मन में किसी ना किसी रूप में एक डर वो चलता रहता है। ये लास्ट स्लाइड जो है ये हमारे समाज की इस समय की सबसे विभत्स सच्चाई है। पहला है जिसको फोर्स्ड सेक्स कहते हैं, यानी मैरिज के अंदर महिला की इच्छा नहीं है फिर भी उसे फोर्स करना, या बाहर जो रेप के रूप में उभर के आता है, उससे भी एक स्टेज ऊपर अब जो गैंग रेप जिसको कहा जाता है, यानी एक व्यक्ति से ज्यादा, और उससे भी एक स्टेज ऊपर कि रेप होने के बाद एविडेंस के रूप में भी वो ना रह जाए तो उसको जला दिया जाता है। इससे ज्यादा जिसको कमोडिफिकेशन कहते हैं वो और नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाइयां बहुत कम सामने आती हैं, और पिछले 3-4 वर्षों में क्योंकि मीडिया थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो गया है या महिलाएं खुद भी सामने आके इस चीज को रिपोर्ट करती हैं, लेकिन ये हर जगह होता है, हर स्टेट के अंदर होता है, कुछ स्टेट्स की परसेंटेज ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली जो समाज के रक्षक होने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, जिसको सही मैसेज, चाहे वो पुलिस वाला हो, जिसको मैसेज भेजना चाहिए कि इस तरह की चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ऑपोजिट मैसेज भेजता है। तो उस वजह से जो किसी भी प्रकार का फोर्स्ड सेक्स करने वाले लोग हैं उनके हौसले कई जगह बुलंद हो जाते हैं। प्लस लॉ जो है, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, लेकिन एवरेज 5 से 10 साल लगते हैं। उस दौरान उस व्यक्ति को जो उस चीज से गया है, प्लस फैमिली को जो महसूस करना पड़ता है, उसका मानसिक इम्पैक्ट जो है वो कई बार पीढ़ियों तक चढ़ता है, क्योंकि वही फीलिंग उसके बच्चों में भी आती है या उसके बच्चों को भी कहीं ना कहीं महसूस होता है। और सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि समाज भी कई बार उन्हीं लोगों को ये कहकर कि तुमने शायद ड्रेस ठीक नहीं पहनी थी या तुमने ठीक तरह से अपने आप को बचाया नहीं वगैरह वगैरह करके भी उनका तिरस्कार करता है। और एक और सच्चाई है, अभी हम सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, और वो सच्चाई है फीमेल सेक्स वर्कर्स। भारत में कई बच्चे जो गायब हो जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, ट्रेन से अगवा कर लिए जाते हैं, कई बच्चियां जो काम करने के लिए अपने घर से बाहर जाती हैं और सडनली डिसअपियर हो जाती हैं, वो एक्चुअली इंडिया में या बाहर के कंट्रीज में सेक्स ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उनकी शुरुआत फोर्स्ड सेक्स से होती है और उसके बाद उनको जब कोई और चारा नहीं दिखता तो फिर उस तरह के कई विशेष सर्कल्स हैं। प्लस लास्टली एक्सप्लॉयटेशन इन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो वृद्ध लोगों के रहने की जगह हो या मेंटली डिसेबल्ड बच्चों की जगह हो या हॉस्टल्स हो, इस तरह की कोई भी जगहें जहां पे कि महिलाएं या बच्चे रहते हैं उनका उस जगह पे एक्सप्लॉयटेशन, ये आज की सच्चाइयां हैं। और इसकी परसेंटेज 10% से लेके 50% तक अलग अलग कैटेगरी की है। तो हम छोटी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, इससे प्रभावित जो लोग हैं उनकी मानसिकता के बारे में आप खुद सोच सकते हैं। वो हमेशा उसी डर में चलते हैं, क्या उनका सशक्तिकरण पॉसिबल है? एंड ऑफ द टॉक आई विल टॉक अबाउट यस। हर व्यक्ति का, चाहे उसके साथ जीवन में जो भी गुजरा हो, किसी भी स्टेज पर अपने को बदल पाना और अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करना पॉसिबल है। विश्व में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे वुमेन सीईओज हैं? सारे लोग, सारे महिलाएं हैं जो कि पोजीशन ऑफ पावर में है। ब्रह्म कुमारीज, ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक खूबसूरती ये भी है चक्रधारी दीदी कि कोई कंपटीशन नहीं है आपके साथ। आपने सुना होगा कि भाई भी बड़े फख्र से कहते हैं, मुझे भी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी अगर कोई बॉस होती तो शायद मुझे लगता कि अरे वो मेरी बॉस है। लेकिन यहां पर क्योंकि स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अलग है, बहनें एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हैं लेकिन कहीं भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से नहीं, पोजीशन ऑफ लव से। तो उस वजह से जो मेल्स हैं उनको भी बुरा नहीं लगता। और ये एक तरह से और भी रोल मॉडल है कि किस तरह से बदलते समाज में भी हम अगर चाहें तो वैल्यूज और वो लोग जिनका सशक्तिकरण होना जरूरी है उनको सामने लाया जा सके। ब्रह्मा बाबा की एक्चुअली सोच शुरू में यही रही, क्योंकि उस समय महिलाओं को बहुत ज्यादा सशक्तिकरण की जरूरत थी। समाज में धीरे धीरे उनकी पोजीशन खत्म होती जा रही थी, तो उनके सामने लाना और फिर ये दिखा पाना कि जिन बच्चियों ने शायद पढ़ा भी नहीं है फॉर्मली, जिनको कोई और ट्रेनिंग नहीं है, जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो आके पूरी तरह से एक संस्था को संभाल कर और उसको एक छोटी सी 350-400 लोगों से 145 देशों में 8,500 सेंटर्स में लेके जा सकते हैं। तो ये एक सच्चाई है जो कि रोल मॉडल के रूप में चल रहा है। नाउ देयर इज वन दिस साइड विच इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ और दूसरी तरफ है जिसको कहते हैं मेंटल इल हेल्थ। आप में से कितने लोग अपने आप को मेंटली हेल्दी महसूस करते हैं? सिर्फ 2 या 3। हम में से हर कोई मेंटली हेल्दी भी है और मेंटली इल हेल्थ भी है, दोनों साथ चलते हैं। परफेक्ट पोजीशन कभी नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम डावाडोल भी हो सकते हैं, लेकिन सेम व्यक्ति अगर चाहे तो शाम को अपनी पोजीशन में बदल भी सकता। लेकिन साथ ही साथ एक बात समझने की ये भी है कि अगर ज्यादा देर तक हम मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं तो उसका सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं, एक तिहाई ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम साइकोसोमेटिक इलनेसेस बोलते हैं। आप फिजिशियन के पास जाते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम आपको साइकोलॉजिकल है। करीबन 25% लोगों को कभी ना कभी किसी ना किसी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यू जिसको बोलते हैं या मेंटल डिस्ट्रेस या मेंटल डिसीज का सामना करना पड़ता है 25% लोगों को। तो ये एक नंबर है जिसकी वजह से हम जहां हैं वहां पे पूरा अपना सशक्तिकरण नहीं महसूस कर सकते, पूरा खुश नहीं रह सकते और जो समाज को दे सकते हैं वो नहीं दे सकते। वेरी क्विकली 3-4 आंकड़े, डिप्रेशन महिलाओं में पुरुषों से 2 गुना अधिक पाया जाता है, सीवियर डिप्रेशन। माइनर डिप्रेशन 2 से 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। कई कारण है, समय नहीं है इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जो उनकी समाज में पोजीशन है, 2 उनको कई तरह के ज्यादा काम करने पड़ते हैं। आज के समय में भारी काम भी करने पड़ते हैं लेकिन घर को भी पूरा संभालना पड़ता है। और 3 हार्मोनल या दूसरे जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से भी उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा पाए जाते हैं 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों में। डिप्रेशन करीबन 25% लोगों में माइल्ड मॉडरेट सीवियर में पाया जाता है और वहां पे भी महिलाएं डबल होती हैं। बच्चियों में जब मेंसेस की शुरुआत होती है, मेंसेस से बिल्कुल पहले जिसको प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन कहते हैं और मीनोपॉज, ये 3 अवस्थाएं हैं जिसमें कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में डेफिनेटली ज्यादा महसूस करना पड़ता है और वो कई बार उनकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकते हैं। बच्चियों में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण से कई बार वो विड्रॉ करनी शुरू कर जाती हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा। और घरों में समझाने वाला या अपना सही ध्यान कैसे रखना है ये करने वाला कोई नहीं होता। उसी तरह से महिलाओं में जो कामकाजी हैं, हर महीने अगर 5 या 7 दिन उनके खराब होते हैं इस कारण से क्योंकि उनको प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन है। बॉस समझ नहीं पाता कि ये वो 2 या 3 दिन के लिए गायब क्यों हो जाती है, उन्हें बता भी नहीं पाती। और यही बात मीनोपॉज के समय में आती है 50-60 के बीच में, जहां पे कि आमतौर पे आज के दौर में महिलाएं पीक पे होती हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन में होती हैं, लेकिन अगर उसी दौरान में उनको डिप्रेशन होना शुरू होता है जो कि मीनोपॉजल डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, या कठिनाइयां होनी शुरू होती हैं, तो उनका कैरियर ग्राफ पुरुषों के मुकाबले में डाउन होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल समस्या भी है और समाधान भी बहुत आसान है। इसी के साथ महिलाएं क्योंकि स्पेशल हैं, पुरुष और सब कर सकते हैं, बच्चा नहीं पैदा कर सकते। ये स्पेशल रोल आपके लिए। लेकिन इसी के साथ में एक और जुड़ी प्रॉब्लम है कि उस दौरान में जिसको कि हम एंटीनेटल ब्लूज कहते हैं, उसमें डिप्रेशन होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से। और जस्ट आफ्टर डिलीवरी करीबन एक तिहाई महिलाओं को जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं, इंडिया में ये 40 दिन का एक पीरियड है। और वो 40 दिन के पीरियड का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उस दौरान में महिला अपने आप को नॉर्मल नहीं महसूस करती, कई तरह की दिक्कतों से चलती है। बच्चा होने की खुशी भी है लेकिन नींद पूरी नहीं आ रही, काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और कहा जाता है कि मां के घर चले जाओ क्योंकि मां ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगी। और एक बात शाम को उठी थी कि अगर हम डॉटर इन लॉ को डॉटर समझ लें तो एक बहुत बड़ा बर्डन दूर हो जाए, एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत आसान सामाजिक उपाय। लेकिन होता नहीं है, और क्योंकि नहीं होता इसलिए वो सहती रहती है। ये अगेन कंपेयर टू मेल्स एक प्रॉब्लम है जो महिलाओं में देखी जाती है। महिलाओं में और पुरुष में जब उन्हें एंग्जाइटी होती है, जब उन्हें कुछ मेजर मेंटल प्रॉब्लम होती है, जिस तरह का इलाज मिलता है, जितना मिलना चाहिए, और उनके लिए स्पेशल सर्विसेज आज के समय में एक्स्ट्रा नहीं है। स्पेशली अगर उन्हें इंस्टीट्यूशंस में रहना पड़े तो महिलाओं के लिए महिला मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो या वो बेड्स हो, वो नहीं है। मेडिकल रूप से भी अगर देखा जाए तो आज के समय में बाहरी समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हुआ है। चाहे उनकी एबिलिटी टू पे है लेकिन फिर भी शायद उन्हें उतना अच्छा इलाज ना मिल पाए जितना कि मेल्स को मिलता है। पिछले करीबन 10 वर्षों में मैं जो प्रैक्टिस में देख रहा हूं, महिलाओं में सिगरेट पीने की मात्रा और शराब की मात्रा पहले के मुकाबले में कई गुना बढ़ी है। उसका एक और बड़ा सीक्रेट आपको बताता हूं। आपने पता नहीं कितने लोगों ने देखी है एडवर्टाइजमेंट्स फॉर टबैको। जब टबैको कंपनीज को पता है कि इतने लोगों ने हर साल तंबाकू की वजह से मर जाना है तो उनका बिजनेस तो कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। सो तरीका क्या अपनाया जाता है कि नई पॉपुलेशंस को लेके आओ, नए लोगों को शुरू कराओ। और करीबन 15 से 20 वर्षों में जैसा पाया गया है कि मेल्स ने खासतौर पे तंबाकू को छोड़ना शुरू कर दिया है, महिलाओं ने और एडोलेसेंट्स ने उसको पीना शुरू कर दिया है। और एक बेचने का तरीका यह है, बी लाइक अ मैन, फील एम्पावर्ड, जेंडर इक्वालिटी, जो मैसेज जाता है कि आप किसी से कम नहीं है तो इस चीज में भी कम नहीं हो। उसी तरह से अल्कोहल की स्पेशल बॉटल्स, स्पेशल ड्रिंक्स जो कि महिलाओं को टारगेटेड है, आप में से बहुत ज्यादा लोग, मुझे नहीं मालूम, गए होंगे शायद, किसी पब में अगर जाएंगे तो वहां पे स्पेशल सेक्शन है फॉर वुमेन कि ये लेडीज ड्रिंक है, अल्कोहल उसमें भी है लेकिन थोड़ा सा कहते हैं माइल्ड है, तो वो अगेन एक नई पॉपुलेशन। इंसिडेंटली महिलाओं में एंटी डिप्रेसेंट्स और पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आज के समय में बढ़ गया है, जितना कि एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर्स की उससे करीबन 10 गुना ज्यादा मार्केट में वो बिकती हैं, क्योंकि उसको दर्द निवारक के रूप में, जब आप टेंस हैं तो मसल्स आपके स्ट्रेच हो जाते हैं और उसको कम करने के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस एक गोली निकल लो। तो वो अगेन फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन है जो कि महिलाओं में आने शुरू हुए हैं। ये कुछ सशक्तिकरण के तरीके हैं जो हम अपनाते हैं। हम अभी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल कॉन्टिन्यूम की बात कर रहे थे, तो फिजिकल तरीके एक्सटर्नल जो कि अपनाए जाते हैं कि शरीर को बेटर कर लो, लुक वेल। तो एक फैशन इंडस्ट्री है जिसमें हर साल फैशन बदलता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, गोरा लगना, एक तरह की स्किन में ग्लो होना, उसके बारे में बात होती है। ह्यूज इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री की फैट की रिमूवल हो, या चेहरे की झुर्रियां जो हैं उनको कम कर दो, या नाक की सुंदरता को बढ़ा दो, लाखों का बिजनेस है। करीबन 2.5 गुना बिजनेस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का ग्रो हुआ है पिछले 5 वर्षों में, और हम यहां पे करोड़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये है इंटरनल एम्पावरमेंट। ये एम्पावरमेंट तब आती है जब हम जो हैं, जैसे हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो मेरे हाथ में है, जिस रूप में मैं अपनी मूल शक्तियों को बढ़ा सकता हूं या बढ़ा सकती हूं, अगर उसे रिकग्नाइज करके हम बेटर करना शुरू करते हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पर्पस इन लाइफ। जब हम बच्चे थे तो कोई ना कोई ड्रीम था कि बड़ा होकर ये बनूंगा, बनूंगी, पर वो समय के साथ साथ वो ड्रीम जो काम करना है सिर्फ उसमें खो जाता है, जो और हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो वो पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना सशक्तिकरण का एक सबसे अच्छा तरीका है। उसके बारे में इन कॉन्फ्रेंसेस के सिवा बाहर बात नहीं होती, घरों में बात नहीं होती, स्कूलों में कोई ऐसा पीरियड नहीं है, और अगर किसी जगह इंट्रोड्यूस होता है तो उसको पॉलिटिकल डिबेट्स बन जाती हैं कि वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करने का मतलब है कि आप एक तरह की सोच बच्चों के ऊपर थोप रहे हो। अगर उन्मुक्त रूप से उन्हें ग्रो करने का मौका मिले, अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, वो सबसे अच्छी शिक्षा है जो हम दे सकते हैं। बाकी सारी बदलती रहती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 20 साल पहले बहुत बड़ी चीज थी, आज की डेट में कोई देखता नहीं है, हर 5 साल में बदलती है। लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की अगर हम शिक्षा देते हैं तो वो जरूर व्यक्ति का अंदर से सशक्तिकरण करता है। इसके लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। ये टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर के द्वारा नहीं यूज होती, लेकिन ये अपने अंदर की सोच की टेक्नोलॉजी है, जिसमें फर्स्ट है माइंड मैनेजमेंट। उसके बारे में मैं बहुत ब्रीफली अगले 7 से 8 मिनट में बात करूंगा। दूसरी है पावर्स ऑफ द सोल। मेरे ख्याल से इसमें 3 या 4 आमतौर पे लेक्चर्स होते हैं, शायद 2 हो चुके हैं और 2 और होने हैं, जिसमें कि अष्ट शक्तियां, जिसकी की बात पिछले सेशन में चल रही थी, किस प्रकार से हम अपने अंदर सोई हुई उन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तीसरी है स्पेशल फेमिनिन क्वालिटीज, ममत्व, बिना भेदभाव के। मां जो है वो आमतौर पे बच्चों में भेदभाव नहीं करती, कहीं ना कहीं बाहरी कंडीशनिंग से उसको सिखाया जाता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि स्पेशल क्वालिटीज हैं वेमेन की, और अगर हम उन क्वालिटीज को बढ़ाते हैं तो हम अपने अंदर सशक्तिकरण को महसूस कर सकते हैं। एंड लास्टली स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, जिसमें कि मेडिटेशन, नोइंग हु यू आर, नोइंग व्हाट योर पर्पस इज, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। ये हम रोज करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। हम में से हर व्यक्ति माइंड मैनेजमेंट के लिए जो भी समय है, जो भी हमारी पावर ऑफ थिंकिंग है, जो भी हम अपने लेवल पे डाइट एक्सरसाइज वगैरह को कर सकते हैं जानने के बाद वो करते हैं, अनफॉर्चुनेटली प्लान्ड तरीके से नहीं करते। शाम को एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूं अपने आप में बदलाव लाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा। उसका रीजन ये है, आपने शायद बात उठाई थी, उसका रीजन ये है कि हम एक प्लान्ड तरीके से नहीं करते। क्या बदलना है, कितने दिन में बदलना है और उसके लिए रोड मैप क्या है, ये प्लान नहीं होता। सही मूल्यांकन समय समय पर अंडर गाइडेंस ये नहीं होता। हम एग्जाम पास करना चाहते हैं जिसके कि लिमिटेड फायदे हैं, लेकिन लिमिटेड है। उसके लिए हम पूरा प्लान करते हैं कि कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा बेस्ट ट्यूटर है, कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना है, लेकिन अंदरूनी जो सफाई है उसके लिए प्लान नहीं होता। तो वो सब चीजें अगर हम सही रूप में कर पाए, देन यू विल बी एबल टू मैनेज योर माइंड वेल। लेट मी जस्ट टेल यू, करीबन 5% एट बेस्ट, ज्यादातर लोग 2-3% अपने माइंड को इस्तेमाल करते हैं। 98-95% सोया पड़ा है। जब स्टिमुलेट होते हैं तो हमारी शक्तियां निकल के आती हैं। आपने सोचा कि सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक आप अभी भी जागे हुए सुन रहे हो, पिछला सेशन 2.5 घंटे चला, बैठे रहे, वो भी आपके पावर है ना माइंड की, लेकिन हम रोजमर्रा में उसे इस्तेमाल नहीं करते। यहां पे आते हैं तो कहते हैं स्पेशल जगह, जगह भी स्पेशल है, लोग भी स्पेशल है, लेकिन आपकी भी तो पावर्स है ना जो समय में निकल के आई। अगर रोज हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना शुरू कर दें तो हम कई गुना जितना आज पा रहे हैं उससे ज्यादा पा पाएंगे। ये अगेन माइंड कुछ चीजें करता है जो कि हम स्वतः करते रहते हैं, दूसरों के साथ सही रिलेशनशिप, काम को सही रूप से देखना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उनमें से विचार आते हैं, कई विचार हैं जो अच्छे नहीं है उनको दबा देना, अच्छा आइडिया आया उसको उभार लेना, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। 500 चीजें बॉडी की फंक्शन, माइंड की फंक्शन लगातार बिना किसी कंट्रोल के चल रही हैं। अगर हम उसको प्लान्ड तरीके से थोड़ा थोड़ा करके उभारना शुरू कर दें तो हमारी फिजिकल और मेंटल पावर्स बहुत गुना बढ़ सकती हैं। ये कुछ चीजें हैं जो उसके बीच में आती हैं, जिसको हम फॉल्टी माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। बेसिकली जो हमारे नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स हैं, अगर आपकी बाल्टी में छेद होगा जितना मर्जी भर लो पानी नहीं भरेगा, तो एक थोड़ा सा भी जो छेद है हमारे नेगेटिव विचारों का वो कभी भी सशक्त विचारों को पूरा नहीं आने देगा। उसी तरह से अगर हम दूसरों के साथ मिलते हैं, यहां पे कितने झगड़े हुए आपके आज सारा दिन में, किसी के हुए, किसी ने बुरी तरह से बोला, बीकेज ने नहीं बोला या आपस में भी नहीं बोला, ऐसा नहीं लगा इसने क्यों ऐसा बोल दिया, कहना नहीं चाहिए था, मेरा ध्यान नहीं दिया, ओके? ये एक एग्जाम्पल है 3 दिनों में। नॉर्मल लाइफ में बहुत हो जाते हैं रोज ही, और वहां पे हम एक्चुअली अपने आप को बचाने के लिए ना अपने माइंड पे एक पर्दा डाल देते हैं, नहीं तो हम सारा दिन हर्ट होते रहे। मैंने बात की थी कि इमोशनली हम जब डिस्टर्ब हो जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम अपने आप को बचाने के लिए शटर्स डाउन कर देते हैं। यहां पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हर कोई दूसरे किसी को देने की कोशिश कर रहा है। एक स्टोरी है स्वर्ग और नर्क की, शायद सुनी हो, कि बहुत बढ़िया पकवान बने, बड़ी टेबल थी, सबके सामने रखे गए, लेकिन चमचे जो थे वो करीबन 2 फुट के थे। क्या करेंगे? जी हाँ, अगर एक दूसरे को खिलाएंगे तो सारे खा जाएंगे। सच बात यही है कि यहां पर आपको ये लगता है कि दूसरा मेरे लिए कर रहा है, मैं उसके लिए करूं, वो एक चेन बन जाती है, लेकिन बाहर एक नेगेटिव इंटरेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। एक ट्राई करना बाहर जाके, यहां पे तो सारे एक्सपेक्ट करते हैं और जिस दिन नहीं होता उस दिन बुरा लगता है, लेकिन बाहर जबकि ऐसा नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं तो किसी को सचमुच का एक कॉम्प्लीमेंट दे दें। अगर किसी ने आपसे अच्छी बात की या बुरी बात नहीं की तो उसकी खासियत है, तो उस समय के लिए उसको थैंक यू बोल दे। वो आपका थैंक यू थोड़े देर तक जरूर उसके मन में रहेगा और वो अगले को बोलेगा और वो एक चीन है जो बननी शुरू हो जाएगी। वहां से शुरुआत होती है समाज की। तो जो नेगेटिव इंटरेक्शंस हमारे रोज चलते हैं, अगर हम उन्हें कम कर सकें तो बोझिलपना डेफिनेटली कम हो सकता है। ये बात बच्चों से शुरू होती है, हस्बैंड वाइफ में शुरू होती है, जहां काम कर रहे हैं वहां पे शुरू हो जाती है। एंड लास्टली व्हाट वी कॉल एज फॉल्टी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। टेलीविजन और इंटरनेट के बारे में बहुत बात चली, रिमोट तो आपके पास है ना, क्यों देखते हो उस चैनल को, बंद कर दो। देयर इज समथिंग कॉल्ड NBA, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, हर चैनल के नीचे आता है कि अगर आपको इस चैनल के कंटेंट में कोई आपत्ति है हमें लिखें या ईमेल करें। कितने लोगों ने किया कभी भी? हम बात करते हैं। रोज की एक ईमेल हर चैनल के अगेंस्ट डालना शुरू कर दो, उन तक जानी ही पड़ेगी। देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व, मैं जानता हूं उस प्रोसेस को। हर ईमेल जो आएगी कि ये चैनल का कंटेंट खराब है, इससे मेरे बच्चे को ये हुआ, इससे समाज पे ये फर्क पड़ रहा है वगैरह वगैरह, उनको, चैनल वालों को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एक अथॉरिटी है, उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। हम करते नहीं। तो जितनी गलत प्रोसेसिंग हो रही है उसको ठीक करने के भी तरीके हैं, और कुछ ना भी हो तो अपने को तो बचा सकते हो ना, उन सब चीजों से कट जाओ, अपने आसपास वालों को काट दो। अगर आप किसी ऑफिस में हैं, आप लिख दें कि एक्सटर्नल इंटरनेट पे आप यहां नहीं जा सकते, सिर्फ ऑफिस की ईमेल देखी जाएगी। तब अगर आप ये थोड़ी बहुत चीजें भी करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। लास्टली व्हाट वी कॉल एज दी फॉल्टी नॉलेज ऑफ हु एम आई, मैं कौन हूं। तो जहां से हमारी शुरुआत हुई थी कि जो बॉडी है और वो दिखती है, अगर हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर उससे जुड़ी सारी चीजें याद आएंगी। लेकिन अगर मैं कौन हूं, इसकी नॉलेज है कि मैं आत्मा हूं, मेरी कुछ पावर्स हैं, वो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो उन्हें बदल सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, पुरानी कंडीशनिंग को चेंज कर सकता हूं, नई चीज ला सकता हूं, तो सशक्तिकरण होगी। तो अगर वो होना शुरू हो जाता है, दूसरी नॉलेज ऑफ द पावर्स ऑफ सोल, एक सबसे बड़ी पावर है फुल स्टॉप की। अगेन ये चीजें आप में से जो कोई जानते हो, पर जो ना जानते हो, 7 दिन का कोर्स करने के बाद एक रोज की क्लास होती है जिसको मुरली कहा जाता है। मुरली इज बेसिकली अ वे ऑफ चेंजिंग योर कंडीशनिंग। रोजमर्रा के जीवन में आप किस प्रकार से अपनी सोच को बदल सकते हैं या सशक्त बना सकते हैं, इसके बारे में पॉइंट्स होते हैं। स्लोगन होता है, ब्लेसिंग होती है। तो अगर वो रोज आपको फीड मिलती रहे और उस फीड को लेकर आप रोज अपने अप्लाई करते रहो, देन अगेन आप उन पावर्स ऑफ सोल को इन एक्शन देखेंगे, सिर्फ कहना नहीं रह जाएगा, कथनी करनी एक समान हो जाएगी। थर्ड, द इश्यू ऑफ कर्मा। बहुत लंबी बात है, समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मैं आज हूं वो जो अभी तक किया उसकी वजह से हूं। लोग यहीं पर अटक जाते हैं कि अच्छा मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ, या तो ये, या दूसरी कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि होना ही था। लेकिन इसकी एक और गुहे रहस्य है, वो ये है कि जो मैं अब कर रहा हूं आने वाले समय का वो बीज है, वो भी कर्म का हिस्सा, वो कर्म इन एक्शन है। तो अगर मेरे आज से सोच, कहना, कर्म सशक्तिकरण के हैं, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो जरूर सशक्तिकरण के हो जाएंगे। आप जितने भी सीनियर्स हैं उनकी स्टोरी सुनेंगे, उनकी स्टोरी भी ऑर्डिनरी है, शुरुआत जिंदगी की कहीं से भी हुई होगी, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपने आप को कैसे बदला, और अब वो उनके और उनके संपर्क में जो हजारों लोग आ रहे हैं किस प्रकार से बदल रहे हैं, इनकी स्टोरीज हैं। सो दैट इज स्टोरीज ऑफ कर्मा इन एक्शन। एंड लास्टली, जिसको ड्रामा कहा जाता है, कि जो हो रहा है वो घटित है, उसको नहीं बदल सकते, लेकिन उसके बारे में परेशान होके आप अपनी स्थिति को जरूर खराब कर सकते हैं। तो किस तरह से जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, लेकिन किस तरह से मैं उसमें अपने आप को ठीक रख सकता हूं, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। वंस वी हैव दैट, देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट राजयोगी लाइफस्टाइल। राजयोगा एक मेडिटेशन हो सकती है, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, या जीने की कला हो सकती है। राजयोगी लाइफस्टाइल का मीनिंग है जो खा रहा हूं और जो मुझे खा रहा है, मैं जो खा रहा हूं और जो मुझे खा रहा है, इन दोनों की जांच, किस समय खा रहा हूं और उसको किस रूप में पचा रहा हूं, किस रूप में सो रहा हूं, किस रूप में जग रहा हूं, इसकी कंप्लीट नॉलेज, और उस नॉलेज को डे टू डे बेसिस पर जीना, ये समझकर कि मैं इस पूरी कड़ी का एक हिस्सा हूं, जो हो रहा है वो कलेक्टिवली शुभ हो रहा है, कोई भी चीज आउट ऑफ द वे नहीं है, सब कुछ किसी ना किसी कारण से हो रहा है, लेकिन साथ ही में मेरा रोल ये है कि मैं उसको जिस तरह से भी इंडिविजुअली पॉसिबल है अच्छे रूप में निभा पाऊं। When you start doing that, then you reach here. We are spirit materialized, engaged in spiritualizing metta. मैं एक सशक्त एनर्जी हूं जो अपने आसपास की चीजों को भी सशक्त कर रही हूं, चाहे वो मैटर है चाहे वो लोग हैं, क्योंकि मैं एक व्यक्ति जिसमें कि 3 दिन, 5 दिन, 3 साल, 10 साल कुछ देर के लिए आत्मा का बोध होना वो नहीं हूं, लेकिन मैं एक आत्मा हूं जिसने कुछ समय के लिए इस शरीर को धारण किया है। जब वहां से सोच चलनी शुरू होती है तो फिर आपकी आत्मा पावरफुल, मन पावरफुल, जो एक पावरफुल शरीर को सशक्त करेगा और जो भी चल रहा है उसको भी बेटर कर पाएगा। आज अगर शुरुआत 500 लोगों से होगी तो दिसंबर में, जैसे दीदी ने कहा, 5000 आएंगे, वो ज्यादा सशक्तिकरण में होंगे, जो जहां जाएंगे वहां पे अगर 5-5 लोगों को भी करें इसे, तो यहीं से एक सशक्तिकरण का दौर शुरू होगा और उसमें आपके सशक्त मन का सबसे बड़ा रोल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
आप सभी ने अभी डॉक्टर अवधेश शर्मा जी के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण विषय पर बहुत ही सुंदर वक्तव्य सुना। आपने हमें समाज की सच्चाइयों से अवगत कराया और उनसे मानसिक अवस्था पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बताया। साथ ही साथ हम खुद को कैसे इंटरनली एम्पावर कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी दी। भाई साहब ने बताया कि कैसे हम इस ड्रामा के पार्ट को अगर पक्का कर लें तो हम शुरुआत कर सकते हैं एक नए भविष्य की। तो जैसे कहा जाता है, जो बीत गया वो सपना था, आने वाला कल कल्पना है, आज ही अपना है। तो इसको प्रेजेंट भी कहा जाता है, गिफ्ट भी कहा जाता है। तो आज से अगर हम एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए भविष्य की, एक नए सशक्तिकरण की, अपने आप को इंटरनली एम्पावर करके, स्पिरिचुअली एम्पावर करके, तो बेहतर समाज की निर्माण कर सकते हैं। हम सभी तहे दिल से करतल ध्वनि के द्वारा भाई साहब का हार्दिक धन्यवाद करते हैं।
एक मिनट साइलेंस में, ताकि सोने से पहले आपका मन जो जो हुआ आज सारे दिन में उससे शांत होना चाहिए।